नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नारी वंदन सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सबसे मजबूत स्तंभ महिलाएं हैं।
मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा।
इस अवसर पर श्री मोदी ने 6,350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री कल हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले सिक्किम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में संपर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस समारोह में श्री मोदी ने 4,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने पूर्वोत्तर में 6 क्रिकेट अकादमियों का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती में सिक्किम की सफलता पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। पश्चिम बंगाल में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 जिलों की 142 सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। इस बीच पुलिस ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मतदान वाले जिलों से कल रात 800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक 2,300 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। केंद्रीय बलों ने भी जिलों में गश्त, पैदल मार्च और निरीक्षण बढ़ा दिया है। राज्य में मतगणना 4 मई को केरलम, असम, पुदुचेरी और तमिलनाडु के साथ होगी। सरकार ने देशभर में घरेलू एलपीजी और पीएनजी तथा सीएनजी की 100% आपूर्ति का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और किसी भी वितरण केंद्र पर उपलब्धता संबंधी रुकावट नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कर्नाटक के उडुपी में भारतीय रत्न और आभूषण संस्थान के नए परिसर का लोकार्पण किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह नया प्रशिक्षण संस्थान युवाओं और युवा उद्यमियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देगा। संस्थान में आभूषण निर्माण, कंप्यूटर डिजाइनिंग, ढलाई, परीक्षण और फिनिशिंग के लिए 41 मशीन और उत्पादन सुविधाएं मौजूद हैं। रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन के तहत विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में सामने आ रहा है। श्री वैष्णव ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी। सरकार ने बढ़ते तापमान और लू के प्रतिकूल प्रभावों से कामगारों और मजदूरों को बचाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रव्यापी परामर्श जारी किया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि सुरक्षा उपायों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए कर्मियों, उद्योगों और निर्माण कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। समोआ की राजधानी अपिया में राष्ट्रमंडल युवा जूनियर भालोत्तोलन चैंपियनशिप और इसके साथ आयोजित यूनिवर्सल कप सीनियर में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों में सुनील सिंह और अभिनव गोगोई जबकि महिला वर्ग में इसांगफा गोगोई ने स्वर्ण पदक जीता। यूनिवर्सल कप के पुरुष वर्ग में चारू पेशी ने भी भारत को स्वर्ण दिलाया। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के ग्रुप ए मुकाबले में कल भारत का सामना चीन से होगा। भारतीय पुरुष टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत और चीन इस ग्रुप में शीर्ष पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।